اگلی سورت دخان ہے. اس کی پہلی ہی آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے جو کہ انہی آنے والی راتوں میں جو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق دے. دخان کا معنی دھواں ہے. قیامت کے قریب ایک آنے والے دھوئیں کی طرف اشارہ ہے یا اس قحط کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کو چھوڑنے کے بعد مکہ پہ پڑا. سمجھ لیجئے گا کسی بھی شہر یا کسی بھی بستی میں نبی کا وجود اس قوم کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے. جب لوگ اس نبی کی قدر نہیں کرتے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو وہ بستی اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتی ہے. یہی مکہ والوں کے ساتھ ہوا. 13 سال کے ڈراووں کے باوجود جب وہ نہ مانے تو اللہ کے نبی ایمان والوں کو لے کر ساتھ چلے گئے تو پیچھے سے مکہ میں اتنا زبردست قسم کا قحط آیا تھا کہ ان کی آنکھیں ابل گئیں, جانوروں کی چمڑیاں تک کھا گئے. تو نعمتوں کی ناقدری کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچتے نہیں ہیں. یہی چیز ہم اس صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. قسم اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو, کوئی معبود اس کے سوا نہیں, وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے پچھلوں کا رب جو پہلے گزر چکے, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. مکہ والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے, شک چھوڑ دو, اس نبی کو مان جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاؤ گے. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریخ دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا بابلا ہے, ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں. تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. اے اللہ تو ہمیں اپنے انتقام کا شکار نہ کرنا. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے پہلے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. پتہ چلا کہ نبیوں نے جب حق بات کہی تو قوموں نے ان کی جان تک لینے کی کوشش کر دی. اب اگر میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. اگلی آیتوں کو ہائی لائٹ کیجیے اور اداسی کو محسوس کیجیے. فرعون ڈوبا, اس کے ساتھ اس کے لوگ گئے. اب ان کے محلات اور وہ بڑے بڑے ان کے ولاس, وہ کیا مود بولتی تصویر تھی حسرت کی. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے. کوئی گیا ساتھ؟ کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. اسی طرح ایک دن میری اور آپ کی چیزوں کا وارث کوئی اور بنا دیا جائے گا اور ہم اپنی قبروں میں تنہا خالی ہاتھ ڈال دیے جائیں گے اپنے اعمال کی پٹاری کے ساتھ. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. کس پہ روتا ہے آسمان اور کس پہ زمین؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کو راضی کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, اور آسمان کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا اور اس کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے. और जो जमीन पर फितने फसाद फैलाए, आसमान से उनके लिए कहर टूटे, उनके मरने पे कौन रोएगा? खुद से पूछिए, क्या मेरे मरने पर भी आसमान और जमीन रोएंगे? क्या मैंने भी दुनिया में अपने लिए कुछ अच्छे असरात छोड़ दिए? और जरा सी मोहलत भी इनको ना दी गई। इसी तरह बनी इसराइल को हमने सख्त जिल्लत के अजाब फिरौन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिल वाके बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था, और इनकी हालत जानते हुए इनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी, और इन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिसमें सरीख आजमाइश थी। बनी इसराइल के हाल पे हसरत हो रही है इन आयतों पे। जब तक फिरौन की गुलामी में थे ना बनी इसराइल, सीधे थे, बंदे बने हुए थे। जूं ही फिरौन डूबा, ये अपनी मस्तियों में आ गए। तो याद रखिए, बाज दफा मजबूरियों और पाबंदियों में हमारी मुनाफ़कत छुप जाती है। शुक्र करें किसी ने पाबंदी आप पे लगाई, ना लगती तो फिर भी आपने काम कोई नहीं था वो करना, आना आपने फिर भी कोई नहीं था चाहे आप मजबूर होते। असल आजमाइश तब आती है जब पाबंदियां छूट जाती हैं, हालात साजगार हो जाते हैं और सारी मजबूरियां खत्म, और कहा जाता है जाओ दीन का काम करो, तो फिर पता लगता है कि हम कितने पानी में। बास लोग आसानियां मिलते ही सुस्त होने लगते हैं, जैसे हम रमजान के गुजरने के बाद अक्सर हो जाते हैं। आज क्यों आके बैठते हैं, पेट भी खाली, चूल्हा भी बंद, किचन भी बंद। ईद के बाद आने में खाली पेट तो आप नहीं आएंगे, यहाँ तो खाली पेट बैठते हैं ना आगे जबर करके, लेकिन ईद के बाद आपके आने में सबसे बड़ी रुकावट आपका किचन होगा। तो आसानियां मिलते ही सुस्त होना, अल्लाह की पकड़ को बुलाना है। अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा ना करे। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं, अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये बेहतर है या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग? हमने इनको इसी बिना पर तबाह कर दिया कि वो मुजरम हो गए थे। ये आसमान और जमीन और इसके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं पैदा की, हमने इनको बरहक पैदा किया, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। क्या पर्पज ऑफ लाइफ नहीं पता इनको? इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले के दिन का है, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ काम ना आएगा। लिखिए अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा मान है। फिर पढ़े इस आयत को, कोई अजीज करीब किसी के कुछ काम ना आएगा और ना कहीं से इनको कोई मदद पहुंचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम कर दे और वो जबरदस्त और रहीम है। अब आगे जहन्नुम की कुछ चीजें बस यही दुआ करते हुए सुनते जाएं कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा ले। इन शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुख यखलिफ अलबुतून कगली अलहमीद। ज़क्कूम का दरख्त गुनागार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा, पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। कभी बहुत मिर्चें खा ली हैं उसको जहन में लाए, अंतड़ियां कटती भी महसूस हो रही हैं। पकड़ो इसको रगेते हुए, ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच और उंडेल दो इसके सर पर खोलते पानी का अजाब। अल्लाह मला तजन्नो, और अल्लाह किसी को भी ना इसमें डालना। बड़े सर थे ना इनके, बड़ी बड़ी बातें थी, अल्लाह कहते हैं ये झुकते नहीं थे, बिग हेड्स थे इनके। पकड़ो इनको अभी, सरों पे गर्म पानी डालो, और कहा जाएगा चक इस अजाब का मजा। बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी था तू, ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक करते थे। क्या बताया कि जो लोग दुनिया में तकब्बुर करते हैं उनके साथ यही होगा। अल्लाह अकबर। इसके बरक्स खुदा तर्स लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग अमन की जगह में होंगे। अल्लाह हमें ऐसी लोगों में कर दे। बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे। सॉरी, अपना नाम ले और दुआ करें कि अल्लाह में तकवा दे दे और ये सब कुछ जो तू यहां कह रहे ये हमारे हक में आ जाए। अल्लाह से डरने वाले लोग अमन की जगह में होंगे, बाहों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे, ये होगी इनकी शान। और हम गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतों से इनको ब्याह देंगे। नोट कीजिएगा, जन्नत में गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलेंगी, शादी होगी। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे, वहां मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नुम के अजाब से बचा लेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। हदीस में आता है कि जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो मौत को एक चितकबरे यानी इस ब्लैक एंड व्हाइट मेंढे की सूरत में जिबा कर दिया जाएगा, कि आज के बाद अब किसी को मौत नहीं आएगी। अगर कोई खुशी से मर सकता तो जन्नती उस वक्त खुशी से मर जाते कि अब हमेशा हम जन्नत में रहेंगे, मरेंगे नहीं। और इसके ऑपोजिट जहन्नमी गम से मर जाते कि हाय इसके बाद हमारा क्या होगा। और अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नम के अजाब से बचाएगा, यही बड़ी कामयाबी है। करो क्या ए नबी, हमने इस किताब को आपकी जुबान में आसान बना दिया। क्यों? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। क्या आज आपकी जुबान में भी आसान बनाया अल्लाह ने? अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम तर्जमा पढ़ते हैं हमें जरा सी भी मुश्किल होती है सब्र सीखने में, हालांकि आपको तो कई तर्जमे भी बड़े मुश्किल हैं उर्दू के, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम तर्जमा करते हैं नेचुरल वे में, उसमें बहुत सारी बातें सिर्फ तर्जमे से समझ आती हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि मैं अपनी जुबान में कुरान समझ आ रहा है। करो क्या? फरतकिबिन्नहुमुर्तकिबून, बस तुम भी इंतजार करो और ये भी मुंतजर हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने इस बात में कि तुम इंतजार करो इस बात का कि क्यामत के दिन जब ये लोग अपने बुरे अंजाम को भुगतेंगे। अल्लाह ताला हमें इस किताब के लिए मेहनत करने वाला बना दे। सूरत जासिया, जासिया किसको कहते हैं? झुकी हुई, झुकने वाली, नी डाउन। वो लोग जो दुनिया में नहीं झुकेंगे ना अल्लाह के आगे, क्यामत के दिन अल्लाह उनको झुकाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हकीकत यह है कि आसमान और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और इन हैवानात में जिनको अल्लाह ने जमीन में फैला दिया, बड़ी निशानी इन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं, और शब और रोज के फर्क और इख्तलाफ में, और इस रिस्क में जिसे अल्लाह ने आसमानों से नासिल फरमाया, फिर इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा किया, और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसके आयात के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? तबाही है हर उस झूठे बदअमल शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और वो इनको सुनता है, फिर पूरे गरूर के साथ अपने कुफर में इस तरह अड़ जाता है गोया कि इसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। दुआ कीजिए कि कहीं हम ऐसे ना हो कि आयतों पे आयतें पढ़ते जाएं और मानने की बजाय तकबर के साथ आगे बढ़ जाएं। हमारी आयत में जब कोई बात इसके इल्म में आती है तो इसका मजाक बना लेता है। ऐसे सब लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है, इनके आगे जहन्नुम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया इनमें से कोई चीज इनके काम ना आएगी। सोचिए ना, इनके वो सरपरस्त इनके लिए कुछ कर सकेंगे जिनको अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना वली बना रखा है? इनके लिए बड़ा अजाब है। क्या करो? हाज़ा हुदन वल्लज़ीना कफरू बी आयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। ये कुरान सरासर हिदायत है, मानते हैं इस बात को? अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि इसके हुक्म से कश्तियां इसमें चलें, और तुम इसका फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। इसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। ए नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का अंदेशा नहीं रखते, इनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे, और जो कोई नेक अमल करेगा तो अपने ही लिए करेगा। लिखिए अपना नाम, कोई नेकी कर रही हो तो इसका फायदा कल मुझे ही मिलेगा, और जो बुराई करेगा तो वो आप ही इसका खमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की, हमने इनको उम्दा सामाने अजीज से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर इन्हें फजीलत अता की, और दीन के मामले में इनको वाज़े हिदायात दी। फिर जो भी इख्तलाफ इनके दरमियान रूनमा हुआ वो ना वाकफियत की वजह से नहीं था, नोट करे, वही मौजू जिस पे पारा शुरू हुआ था एंड भी उसी पे हो रहा है। फिर कवारियत, बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर कि वो एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के रोज इन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। इसके बाद ऐ नबी, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहरा यानी शरीयत पर कायम किया है, बस तुम इसी पर चलो और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा न करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए, हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। अल्लाह तो हमें यकीन दे दे। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तकाब किया वो ये समझे बैठे हैं क्या हम इन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि इनका जीना और मरना यकसा हो जाए? बहुत बुरे हुक्म है जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया और इसलिए किया कि हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज़ न किया जाएगा। अफरईता मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवाहू, फिर क्या तब तुमने कभी उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया? पीछे सूरह फुरकान में भी यही आयत आई थी। अब 7-8 पारे पढ़ाकर अल्लाह दोबारा मुझे इस आयत पे गौर की दावत दे रहे हैं कि कहीं तुम तो नहीं नफ्स की शिकार हो गई? आज भी कुरान इतना पढ़कर कहीं फिर तुम अपने नफ्स की बातें तो नहीं मानते? तो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की बुराइयों से बचा और इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब कौन है जो उसे हिदायत दे? क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? ये लोग कहते हैं जिंदगी तो बस यही दुनिया की जिंदगी है, ये ख्वाहिश नफ्स का आखिरी नतीजा। सिर्फ दुनिया की गमी नजर आते हैं और दुनिया की खुशियां ही खुशियां बन जाती हैं। यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिश अय्याम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं, और जब हमारी वाज आयतें इनको सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती कि उठा लो हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। ए नबी, इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको इस कयामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग जानते ही नहीं। क्या नहीं जानते कि कयामत के बाद उनके साथ क्या होने वाला है? जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज कयामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन बातिल परस खसारे में पड़ जाएंगे। व तराकुल उम्मतिन जासिया, इस वक्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना अमाल नामा देखे। इनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को इन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते हो इसे हम लिखवाते जा रहे हैं। फिर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे थे इन्हें इनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। ए अल्लाह, हमें भी अपनी रहमतों में दाखिल कर दे। और यही सरीह कामयाबी है। इसके बरक्स वमल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया इनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको सुनाई न जाती थी, मगर तुमने तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क्यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते क्यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं। हाईलाइट करें, दुख के साथ कहूंगी कि आज जुबाने हाल से उम्मत मुस्लिमा भी यही जुमला बोल रही है, आई थिंक कि क्यामत आएगी, बट श्योर नहीं है। कैसे? अमल बता रहा है। अगर यकीन हो ना कि हमें एक एक अमल का जवाब देना है और एक एक बोला हुआ लफ्ज वहां तोला जाएगा, तो फिर हम बहुत केयरफुल जिंदगी बसर करें। इस वक्त इन पर इनके अमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका मजाक उड़ाया करते थे, और इनसे कह दिया जाएगा आज हम भी इस तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोजख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना लिया और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। बस आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और ना इनसे कहा जाएगा कि माफी मांग कर अपने रब को राजी कर लो। तो लिहाजा فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین و آسمان میں بڑا اسی کے لیے ہے, وہی زبردست اور دانا ہے. کیا بتا دیا, تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اور جتنا اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی نا, اتنی دوسروں کی بڑائی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بڑائی دے دے. یہ آخری چند آیتیں اس کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ کرتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. خاص طور پہ جب یہ آپ فللہ الحمد کی آیتیں پڑھتے ہیں تو دل کھلتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ واقعی قرآن کی تکمیل کی طرف جاتے جاتے اب دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریفیں ہماری زبان پہ آنے لگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 27 كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا
الحمد لله.